मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 10 अगस्त 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत ही आत्मीय रूप से अभिनंदन भी करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही है कि फिलहाल मैं राम पर आप सबसे अपने कुछ थॉट्स शेयर कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि राम पर जो मैं बातें कह रहा हूं, हो सकता है आप उससे पूरी तरह से असहमत हों या थोड़े बहुत सहमत हों, लेकिन जो भी हो, मैं एक बात जरूर आप लोगों से चाहूंगा और वह यह कि आप सब भी अपने अपने स्तर पर राम के बारे में सोचें। यही उनकी सबसे बड़ी, सच पूछिए तो, विशेषता है। आप अपने ढंग से उन्हें व्याख्यायित कर सकते हैं। मैं अपने ढंग से कर रहा हूं और आपको चाहिए कि आप अपने ढंग से उन्हें व्याख्यायित करें। सोचिए कि आज से लगभग 400 साल पहले तुलसीदास जी ने उन्हें अपने ढंग से व्याख्यायित किया। उससे भी लगभग 1500 साल पहले हमारे वाल्मीकि जी ने अपने ढंग से उसे व्याख्यायित किया। आज हम सब अपने अपने ढंग से व्याख्यायित कर रहे हैं। हिंदुस्तान के ज्यादातर क्षेत्रों में आप साउथ में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, आपको राम कथाएं मिलेंगी, रामायण मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन सब ने राम के चरित्र को अपने अपने ढंग से व्याख्यायित किया, अपने अपने ढंग से लिखा है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी कि हर कोई उसमें अपने अपने ढंग से अपने अपने विचारों की चीजें निकाल ले रहा है। और इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि राम सब में है, और इसीलिए कहा सिया राम मय सब जग जानी, यानी कि ये जो पूरी की पूरी दुनिया है ये राममय है। तो आइए अब मैं थोड़ी सी बात अपनी आगे बढ़ाता हूं। मैं राम की चेतना के बारे में आपसे बातें कर रहा था। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि देखिए, राम के लिए बिल्कुल अनिवार्य नहीं था कि वो वनवास जाएं। वे चाहते तो बाकायदे बहस कर सकते थे, कैबिनेट की मीटिंग बुला सकते थे, और अभी तक का जो नियम रहा है इस बारे में, या कह लीजिए जो संविधान रहा है, उसका वो हवाला दे सकते थे। क्योंकि भारतीय परंपरा ही अभी तक की यही रही है कि जो बड़ा पुत्र होगा वह राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा, और राम सबसे बड़े पुत्र थे तो वहां विवाद की तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन आप देखिए कि राम ने ऐसा कुछ नहीं किया और सीधे सीधे वो तापस वेश धारण करके और अपनी मां के सामने उपस्थित हो जाते हैं। जरा भी उन्होंने वक्त नहीं लगाया। तीसरे पहर की यह घटना है, अगर आप रामचरितमानस को पढ़ें, और सुबह होते होते अर्ली मॉर्निंग भोर में ही वो कौशल्या मां के सामने तापस वेश लेकर उपस्थित हो जाते हैं। और किस तरीके से उन्होंने वन के वास को वन के राज्य में परिवर्तित कर दिया, अपने मन के मैकेनिज्म को इस तरीके से बना लिया कि हर चीज को वो सकारात्मक रूप में देख लेते थे, वही उन्होंने यहां का किया और आप फिर उसके परिणाम देख ही रहे हैं। अगर आप पूरे के पूरे राम कथा में से राम के 14 वर्ष वनवास के निकाल दें तो आप देखिए कि राम का जो व्यक्तित्व है, उनकी चेतना की प्रखरता है, वो काफी मध्यम पड़ जाएगी। और हो सकता है कि अगर आप इस हिस्से को निकाल दें तो शायद जो हम उन्हें अवतार मान रहे हैं उस पर भी एक विवाद की स्थिति बन जाए। खैर, वो अलग बात है। दोस्तों, राम के बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, राम कथा से हम सभी लगभग लगभग परिचित हैं, रामलीला के जरिए परिचित हैं, रामचरितमानस के जरिए परिचित हैं, लोगों से हम कथाएं सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, अलग अलग तरीके से छपी हुई चीजें पढ़ने को मिलती हैं, हम सभी परिचित हैं। मैंने ये महसूस किया है कि उनमें जो भी बातें कही जाती हैं वो बहुत ही मूलभूत बातें होती हैं, जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, जो बड़ी बड़ी बातें हैं वही कही जाती हैं और वही रिपीट भी होती रहती हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि नहीं, राम के बारे में ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो उनके चरित्र में एक तरीके से कसीदेकारी का काम करती हैं, सौंदर्य लगा देती हैं, उनके चरित्र को और ज्यादा ऊंचा उठा देती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि मैं राम के वनवास की बात कर रहा हूं, राम को मौका मिला और वो वनवास के लिए निकल गए। लेकिन इससे पहले तुलसीदास जी ने एक बहुत ही खूबसूरत प्रसंग उसमें लिखा है जिससे हम सब लगभग लगभग अपरिचित से ही हैं। हो सकता है कि आपको इसकी जानकारी हो। जब राम को यह पता लगता है कि मेरा कल सुबह राज्याभिषेक होना है तो देखिए, वो इससे खुश नहीं होते हैं और न इससे वो दुखी होते हैं कि भरत को राज सिंहासन दिया जाना है, बल्कि सच पूछिए तो इससे पहले ही राम के मन में एक प्रश्न उठने लगा था। और जब ये शब्द सुनते हैं राज सिंहासन का, तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि उनके हृदय में विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। विस्मय का मतलब है आश्चर्य। तो भाई आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि ये तो था ही कि वो बड़े पुत्र हैं तो राज सिंहासन उन्हीं को मिलेगा, तो विस्मय क्यों हुआ? आश्चर्य नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ। अब आप देखिए कि वो आश्चर्य हो किस बात पर रहा है। आश्चर्य उन्हें इस बात पर हो रहा है कि हम चार भाई हैं और चारों भाई एक ही साथ, चारों ने जन्म लिया है, यानी थोड़ा सा आगे पीछे होने की वजह से राम बड़े हो गए हैं, लेकिन लगभग लगभग एक ही साथ जन्म लिया है। उनका खाना पीना एक ही साथ हुआ है, सोना जगना एक ही साथ हुआ है, लड़कपन में खेले कूदे एक ही साथ हैं, कंछेदन यज्ञोपवीत जैसे जो संस्कार होते हैं वो एक ही साथ हुए हैं, विवाह भी एक ही साथ हुआ है, सब कुछ एक ही साथ हुआ है। तो फिर ये क्या हुआ कि राज सिंहासन मुझे दिया जा रहा है और इसे सीधे सीधे वो अनुचित कहते हैं कि ये मुझे सही मालूम नहीं पड़ रहा है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक जो है वो बड़े भाई को मिलेगा, बड़े भाई का होगा। देखिए तुलसीदास जी के शब्द क्या है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, इससे आप थोड़ा सा अवधी भाषा और साहित्य का आनंद भी ले सकेंगे। जन्मे एक संग सब भाई, समझ में आ गया, भोजन शयन केली लड़िकाई, केली का मतलब खेलना, लड़िकाई का मतलब है बचपन बड़प्पन, बचपन के लिए बड़प्पन तो नहीं, करण वेद उपबीत वियाहा, कर्ण छेदन एक ही साथ हुआ, यज्ञोपवीत एक ही साथ हुआ, विवाह भी एक ही साथ हुआ, संग संग सब भय उछाह, और विवाह से संबंधित जितने भी उत्सव हुए वो भी सब एक ही साथ हुए। फिर आगे क्या कहते हैं, विमल वंश, ये जो वंश है ये बहुत विमल है, बहुत निर्मल है, बहुत पवित्र है, बहुत प्रसिद्ध है, ऐसा वंश है राम का वंश। विमल वंश यह अनुचित एको, इस विमल वंश में यह एक बात बहुत अनुचित है, बंध बिहाई बड़े ही अभिषेकु, कि जो बाकी भाइयों को छोड़कर बड़े भाई का अभिषेक किया जा रहा है। तो अब आप देखिए कि जिस नियम कानून के प्रति राम के मन में शुरू से ही संदेह हो, स्वाभाविक है कि जब उनसे मुक्ति का मौका मिला तो उन्होंने तुरंत मुक्ति का उपाय ढूंढ लिया और उन्होंने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। अब आप देखिए कि राम यहां क्या कह रहे हैं, आप देखिए समानता के सिद्धांत को समझने की कोशिश कीजिए। भाइयों के अधिकार की बराबरी के बारे में वो जो सोच रहे हैं उसके बारे में विचार कीजिए। तो मर्यादा से हटकर यहां वह एक नई मर्यादा की स्थापना कर रहे हैं। मर्यादा तो यही है कि बड़े पुत्र हैं, आप राज सिंहासन पर बैठिए, लेकिन यहां वो एक नई मर्यादा को लेकर आ रहे हैं कि चार भाई हैं तो इसमें जो बड़े के लिए ही राज सिंहासन सुरक्षित किया गया है यह मुझे अनुचित मालूम पड़ता है। दोस्तों अब यह छोटा सा प्रसंग है, इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बारे में चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि यह किसी भी मायने में कम वजनी और महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह से कुछ और जो प्रसंग होंगे उनकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज मुझे यहीं अपने इस एपिसोड को समाप्त करना पड़ेगा। नमस्कार।